ओम शांति। धन्यवाद भाई का। हम बाबा के सभी त्यागी, तपस्वी और विश्व सेवाधारी बच्चे हैं। बाबा ने हम सभी को चार सब्जेक्ट में इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, सहज ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा। बाबा ने सेवा के सब्जेक्ट को चौथा नंबर दिया है, परंतु ब्राह्मणों का श्वास सेवा ही है, इसीलिए विषय है समाज सेवा में राजयोग का बैलेंस। तो सेवा तो हमारी जीवन का श्वास है, ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन न हो तो व्यक्ति की अवस्था मूर्छित होती है। इसीलिए हम सेवा न करें तो हम भी मूर्छित हो जाएंगे। इसीलिए बाबा ने ये सेवा की चौथी सब्जेक्ट हमें दी हुई है। और सेवा करते हुए हमें बाबा की याद और सेवा का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम राजयोगी तपस्वी आत्माएं हैं, हम साधारण नहीं है। दुनिया के भेद में अगर हम एक एक बाबा के बच्चे को देखते हैं तो सच में इस कलियुगी कीचड़ में दुनिया में बाबा का हरेक बच्चा, चाहे भल बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आत्माएं हैं, लेकिन फिर भी हरेक बच्चा जो है वो कमल पुष्प के समान खिला हुआ है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन की जो धारणाएं हैं वो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। आप देखिए, अब श्रावण का महीना ही चल रहा है, एक महीना बहुत से लोग व्रत उपवास कर लेंगे। कितना समय? एक महीना। खान पान की शुद्धि भी रखेंगे, सब प्रकार की धारणा करते हैं, भक्त तू आत्माएं होते हैं, परंतु एक महीना जैसे ही पूरा हो जाएगा वो जैसे कि वैसे बन जाते हैं। हम उन्हें ये जरूर कहते हैं कि देखिए, एक महीना, नवरात्रि के 9 दिन, जब भी कोई ऐसे धार्मिक त्योहार होते हैं तो आप लोग विशेष रूप से धारणाएं करते हैं, यहां तक कि पवित्र भी रहते हैं, परंतु वो आजीवन के लिए नहीं कर सकते, उनके पास दृढ़ता की ताकत नहीं रहती है। इसीलिए वो शक्ति हमें बाबा ने दी है। हम जो भी कोई धारणाएं करते हैं या संकल्प करते हैं तो हमारे अंदर वो दृढ़ता रहती है। उसका कारण यह है कि हमारा सभी का बुद्धि योग जो है वो बाबा के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक उनका भी बुद्धि योग जुड़ा रहता भक्ति के हिसाब से, तब तक वो धारणा करते हैं, लेकिन सदा नहीं कर सकते। और हमें तो जैसे ही बाबा का परिचय मिला, जैसे ही नियम संयमों का पता चला, हमारा उमंग उत्साह बढ़ गया, क्योंकि बाबा ब्राह्मणों को केवल श्रीमत ही नहीं देते हैं, परंतु श्रीमत जिस समय बाबा जो देते हैं उसे पालन करने की शक्ति भी देते हैं। इसीलिए हम बाबा के बच्चे राजयोगी बन गए। इसीलिए राजयोगी अर्थात ही अनेक प्रकार के रहस्य को जानकर जीवन के अंदर उसे उतारने वाले, धारण करने वाले, उन्हें ही राजयोगी, निरंतर योगी जीवन वाला कहा जाता है। तो तो योग के साथ साथ हम सेवा भी करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बाबा की हम सब सेवाएं करते हैं। चाहे 7 दिन का कोर्स कराते हैं, चाहे कहीं जाकर के भाषण कर लेते हैं, चाहे किसी की मृत्यु हो जाती है तो शांति का पाठ रखा जाता है, या हम कहते हैं कि प्रेयर होती है, वो भी हम सेवा करते हैं। लेकिन सेवा करते हुए भी बाबा की याद का हम बैलेंस रख करके चलते हैं। राजयोग माना याद का, याद और सेवा का बैलेंस, क्योंकि बैलेंस है तो ब्लेसिंग मिलेगी, बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग नहीं। इसीलिए जब छोटे थे तो एक सर्कस देखने को जाते थे, तो सर्कस में ना ऐसे रस्सी बांधी जाती है और रस्सी के ऊपर कोई एक बच्चा बच्ची क्या करती है, वैसे चलते हैं। रस्सी पर चलना इतना आसान होता है क्या? और उसमें भी हमने ये देखा कि वो कहीं बार चाय बनाने का भी प्रोसेस होता, वो सिर पर एक ऐसा रखते, उसके अंदर स्पिरिट का गोली जलाते थे, छोटा सा बर्तन, आग जल रही है और रस्सी पर लड़की चल रही है। तो हम बहुत देखने वाले प्रेक्षक जो होते हैं वो बहुत जोर जोर से ताली बजाते हैं। ताली क्यों बजी? कि ऐसी स्थिति में भी वो अपना बैलेंस रखती है। इसी प्रकार से आजकल बहुत अच्छे अच्छे डांस करने वाले डांसर होते हैं, बच्चे होते हैं, इतने सारे मटके एक पर एक रख कर के नीचे थाली, और थाली के नीचे कांच के ग्लास होते हैं और वो बच्चे उस पर डांस करते हैं। तो कहते बैलेंस की कला देखो इनकी कितनी है। तो कोई एक रस्सी पर चलने का बैलेंस करता है, तो इस झूले से उस झूले पर जाने का अपना बैलेंस रख करके लोग जाते हैं। तो क्या बाबा ने हमें गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ईश्वरीय सेवा करते हुए हम याद और सेवा का बैलेंस नहीं कर सकते हैं? याद अर्थात स्मृति। हर कोई कार्य करते हुए हम कोई ना कोई स्मृति में तो रहती है, बिना स्मृति के तो कोई काम नहीं होता है। तो हम जो भी कोई कार्य करते हैं तो हम बाबा को याद करते हुए कितना करते हैं? अगर ये हम कॉन्शियस में रहेंगे तो हमें भी सेवा करते हुए याद रखना नहीं पड़ेगा, पर हमें स्वतः बाबा की याद आती रहेगी। उसका इतना सुंदर मिसाल है भक्ति मार्ग में, हनुमान जी का। हनुमान जी अर्थात ही याद और सेवा का बैलेंस। जैसे ही राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति दिखाते हैं तो हनुमान जी की जो बैठक होती है वो कैसे होती है? देखिए, एक घुटने के बल पर हाथ जोड़ करके हनुमान जी ऐसे बैठे हैं, अलर्ट पोजीशन में, आज्ञा मिले और सेवा पर चले जाए। इसीलिए बताते हैं कि हनुमान जी इतना श्री राम की याद करते थे, इतना श्री राम की याद करते थे कि रोम रोम में उनके श्री राम बसे हुए थे। पर जब उनसे पूछा गया श्री राम कहाँ है, तो उनके बाजू में खड़े श्री राम पर हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि देखो यहां खड़े हैं, क्या किया, अपना सीना तान के दिखाया कि राम तो मेरे हृदय में है। तो इतना सेवक जब देखो तब वो श्री राम की याद में जब भी कोई कार्य करने के लिए हनुमान जी गधा उठाते थे तो उसके पहले क्या कहते थे? जय श्री राम। कितना बड़ा कार्य! लक्ष्मण जब नागपाश में थे, संजीवनी बूटी लेने के लिए वो गए। जैसे ही वो जा रहे थे वैसे उनके आगे विघ्न आते गए, और एक महाविघ्न आया जब वो समुद्र पार कर रहे थे, तो उस समय एक देवी के रूप में कालेलिनी देवी आई, क्योंकि समय पर वो बूटी न लेकर के आए, इसीलिए बहुत सारा समय उनका अपना व्यस्त कर दिया उनको। लेकिन जैसे ही हनुमान जी को ये स्मृति हुई कि अरे ये तो मेरा समय वेस्ट कर रहे, इसलिए तुरंत वो स्मृति में आए और अपनी शक्ति का प्रयोग किया और वो पहाड़ ही उठा करके ले आए। इतनी उनकी याद की स्मृति पावरफुल रहती थी। ठीक इसी प्रकार से हम भी चलते चलते सेवा करते हैं, कोई ना कोई विघ्न या तूफान आ जाता है, हमारी भी याद की यात्रा की जो स्थिति है वो कई बार अप डाउन होती है, परंतु हमें ये पता है हम सच की नैया में बैठे हैं। सच की नैया हिलेगी डूलेगी लेकिन कभी डूब नहीं सकती। बड़े बड़े तूफान भी आ जाते हैं, कई बार तो योग लगाने की मेहनत भी करनी पड़ती है, परंतु एक महीना पहले से ही तपस्या वर्ष की ही मुरली थी जिस मुरली में बाबा ने कहा था कि कभी कभी ऐसा भी समय आता है पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, योग भी नहीं लगता है, तो भी बच्चे तुम्हें योग में बैठना है, पढ़ाई पढ़नी है, नियमों का पालन करना है, क्योंकि हो सकता कोई ग्रहचारी आ गई हो सकता कोई स्वभाव संस्कार का प्रभाव हुआ हो कि जिस कारण हमारी याद की स्थिति या हमारी जो आंतरिक स्थिति होती है जो अचल अडोल एक रस होनी चाहिए वो कभी अप डाउन भी हो जाती है। परंतु हमें अपने नियम संयम और अपनी रेगुलरिटी जो है उसको कभी भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें बैलेंस रखना ही है। क्या करे ये बात आ गई, क्या करे ये परिस्थिति है, बहुत सारी परिस्थिति आती है, समस्याएं आती है, लेकिन जहां बाबा का साथ है वहां परिस्थिति जो है वो परिस्थिति नहीं रहती है, परंतु परी जैसी हमारी स्थिति बन जाती। परी जैसी स्थिति माना, बाबा साथ है तो हम परिस्थिति पर उड़ती कला के द्वारा विजय प्राप्त कर सकते। परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती है, जंप लगाने में थकावट आएगी, परंतु अगर बाबा याद है तो थकावट तो होगी ही नहीं, लेकिन और भी हम उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। इसीलिए परफेक्ट याद और सेवा का एग्जाम्पल वो हनुमान जी को दिखाया हुआ है। इसीलिए हम ये भी देखें कि हम सेवा करते हैं तो हम नाम मान और शान के लिए तो नहीं करते हैं। कई बार समाज सेवक भी सेवाएं करते हैं, परंतु नाम मान और शान के लिए करते हैं। बाबा के बच्चे जो सेवा करते हैं वो केवल एक ही लक्ष्य से करते हैं, हमें तो बाबा को प्रत्यक्ष करना है। चाहे हम चेहरे और चलन के द्वारा सेवा करते हैं, चाहे हम साधनों के द्वारा सेवा करते हैं, पर हमारा लक्ष्य यही है कि हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है, है ना? सभी का लक्ष्य हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है। अगर ये लक्ष्य रखते हुए हम सेवारत है तो हमें कभी ये संकल्प नहीं आएगा, हम इतनी सेवा करते हैं हमें तो कोई पूछता भी नहीं, हमारी सेवा का तो किसी को पता भी नहीं चलता है, ऐसा हो नहीं सकता। बाबा तो हमें देखता है, कोई देखे न देखे, कोई पूछे न पूछे, बाबा तो हमें रोज देखते हैं। देखते या नहीं देखते बाबा? जो कहते हैं बाबा मुझे रोज देखते, बाबा मुझे रोज पूछते, बाबा ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, और मैं ये कभी नहीं सोच सकता या सोच सकती कि मुझे थोड़ी कोई देखता है। हाथ उठाए जिनको बाबा देखता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा, जो बाबा को देखता है वो हाथ उठाए, जो बाबा को देखता और बाबा जिनको देखते। तो हम सबका नाम किस लिस्ट में है पता है ना? हनुमान जी और नारद जी का मिसाल देखिए। नारद जी भगवान को बहुत याद करते थे, तीनों लोगों का नारद जी भी सैर करते थे, श्री नारायण सदैव जप करते रहते थे। परंतु उनका संस्कार क्या था? इसलिए उनका नाम क्या था? कली का नारद। कली का में जहां जाएगा वहां कुछ न कुछ करेगा, इसलिए नारद जी भगवान के पास गए। देखो भगवान तो अभी तैयार हो रहे हैं, तो भगवान जी के टेबल पे ऐसे कुछ डायरिया पड़ी थी, तो उन्होंने उसमें से एक बड़ा सा रजिस्टर लिया और देखने लग गए। जैसे ही रजिस्टर खोला तो सबसे ऊपर नारद जी का नाम था। सारे पन्ने नारद जी ने खोल दिया, देखा तो हनुमान जी का नाम कहां भी नहीं। तो बस नारद ने सोचा चलो हनुमान जी से मिलाते। गए हनुमान जी से मिलने के लिए और उनको कहते, हनुमान जी आप भगवान के तो बहुत बड़े भक्त हैं, पर पता है भगवान की डायरी में आपका कहीं भी नाम नहीं। लाखों लोगों के नाम लिखे थे और नंबर वन नाम तो मेरा था, परंतु आपका कहीं भी नाम नहीं था। बोला अच्छा, लेकिन हनुमान जी जो थे उनका अपने आप में बड़ा विश्वास था, तो वो कहते, नारद जी आपने जो रजिस्टर देखा और उसमें मेरा नाम नहीं था, परंतु आपने भगवान की एक डायरी देखी? तो कहते नहीं। तो आप जाइए और भगवान की डायरी देखिए और उसमें देखिए मेरा नाम है कि नहीं। और एक दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, आपने जो रजिस्टर देखा उसके ऊपर क्या टाइटल लिखा हुआ था वो भी ध्यान से पढ़ना, और जो भगवान की डायरी है ना उसके ऊपर क्या टाइटल लिखा है वो भी ध्यान से देखना। अब नारद जी गए, नारद जी तो अपने नशे में थे, तो देखा वहां पर तो एक छोटी सी डायरी मिली। जैसे ही पन्ना खोलते ऊपर में हनुमान जी का नाम था, पर हनुमान जी ने क्या कहा था, डायरी के ऊपर का टाइटल देखो। टाइटल में क्या लिखा हुआ था? भगवान जिन्हें याद करते हैं उनके नाम की लिस्ट। और जो इतना बड़ा रजिस्टर था वो तो देख चुके थे, अब उसके ऊपर का टाइटल पढ़ते हैं। तो टाइटल पर क्या लिखा हुआ था? जो भगवान को याद करते हैं उनके नाम की लिस्ट। तो अब बताइए हमारा नाम कहाँ है? बाबा की पर्सनल डायरी में हम हैं। फिर ये संकल्प क्यों आता? हमें तो कोई पूछता नहीं, हमें तो कोई देखता नहीं, हम इतनी सेवा करते हैं, कहाँ किसी का ध्यान है मेरी तरफ। जिसे बाबा याद है, करण करावन हार बाबा मेरे द्वारा करा रहा है, मैं बाबा का वो इंस्ट्रूमेंट हूं। जिसे भगवान याद करते हैं तो कभी मन में ये भावना आएगी नहीं कि मुझे कोई पूछता नहीं, मेरा तो कोई नाम लेता नहीं। तो ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मणों की महिमा ही की जाती है। क्या है ब्राह्मणों की महिमा बताइए जी? योगी जीवन। जैसे हम देवताओं की महिमा वर्णन करते, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे ब्राह्मणों की महिमा की जाती है। निंदा स्तुति, मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय, सब में समान स्थिति जो ब्रह्मा बाबा की थी। हमारे लिए ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल है। ट्रैफिक कंट्रोल, इसीलिए हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। बाबा ने इतनी सेवा की, दादियों ने इतनी सेवा की, क्या हम उनकी जितनी सेवा करते हैं? अपने आप से पूछना है। तो मुझे ये आश क्यों कि मुझे कोई पूछे या मेरा नाम हो या मुझे मान मिले? इसीलिए हमें यहां ही अगर हम ये प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा भविष्य क्या जमा होगा? सेवा का अर्थ ही है दुआएं प्राप्त करना। तो जब हम सेवा करते हैं तो बाबा की दुआएं मिलती है, बड़ों की भी दुआएं हमें मिलती है, और जिनके सेवा के हम निमित्त बनते हैं उन आत्माओं की भी दुआएं प्राप्त होती है। सेवा अर्थात श्रेष्ठ कर्म, चाहे वो हम मनसा वाचा या कर्मना सेवा करते हैं। सेवा शब्द ही पुण्य का खाता जमा कराता। आप देखेंगे कहीं बार दुनिया में मंदिरों में लंगर लगते हैं, भोजन खिलाते हैं, तो बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो झूठे पात्र उठाने की सेवा करते हैं, चप्पल संभालने की सेवा करते हैं। क्यों? हमारा पुण्य जमा होता। जो कोई काम अन्य करना नहीं चाहते वो काम वो लोग करना चाहते हैं, क्योंकि सेवा से पुण्य जमा होता है। और हमारा तो सच में इतना बड़ा पुण्य होता है कि हम स्वयं बाबा की याद में रहकर अन्य आत्माओं को भी बाबा का सत्य परिचय देते हैं और उनका भी बुद्धि योग बाबा से जोड़ने की सेवा करते हैं। ये सबसे ऊंची सेवा है। इसीलिए आप देखेंगे अज्ञान काल में भी अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के बिल्कुल जैसे भी जाने वाला है तो लोग उनको भगवान की याद दिलाते हैं, और अगर वो कॉन्शियस में नहीं है तो कहीं लोग स्वयं भगवान को याद कर भगवान के नाम का उस आत्मा के प्रति दान करते हैं। तो समझते हैं कि अगर हम उसको नाम दान देते हैं या हम उसको भगवान की याद अंत समय दिलाएंगे तो उसका भी अंत सुहाना होगा, अर्थात भगवान की याद में शरीर छोड़ेगा और हमें भी पुण्य मिलेगा। तब सृष्टि चक्र के अंत का काल चल रहा है और स्वयं बाबा आकर हमें भी याद दिलाते, और बाबा रोज मुरली में हमें बताते कि बच्चे औरों को भी तुम याद दिलाओ। तो हम जब बाबा का परिचय देते हैं, उनको बाबा का बच्चा बनाते हैं, तो ये सेवा का पुण्य अनगिनत है। पर अगर कहीं हमको मान शान की आस हो जाती है तो हम अपने आप अपना पुण्य का खाता कम कर देते हैं। इसीलिए सेवा क्यों हम करते हैं और सेवा का महत्व क्या है, लौकिक दुनिया में भी कहते हैं ना, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर पर से गठरी उतरेगी पाप की। तो ये सेवा भी हमें इसीलिए करनी है कि हमारे सिर पर जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा है। जब हम दूसरों की ईश्वरीय ज्ञान से सेवा करते हैं तो पापों का बोझा जो है वो भी हल्का हो जाता। इसीलिए बहुत अच्छी बात मुझे याद आती है कि बाबा ने हम ब्राह्मणों को सबसे श्रेष्ठ वेला, अमृत वेला याद करने का समय ब्राह्मणों का फिक्स किया हुआ है। कहते हैं दुनिया में कोई कितना भी बड़ा वीआईपी होता है, वो भी 15-20 मिनट अपने परिवार के लिए देता है। बाबा से तो ऊंचा कोई है ही नहीं संसार में, सारा संसार ही बाबा का है, लेकिन बाबा ने ये अमृत वेले का समय खास हम बच्चों के लिए रखा है। क्योंकि उस समय जो हम बाबा को याद करते हैं, उस याद से जो हम अपने अंदर शक्ति प्राप्त करते, गुण प्राप्त करते, या बाबा से जो हमें प्यार मिलता है, जो सुख इलाही मिलता है, वो और समय नहीं मिलता है। वरदाता बाबा उस समय वरदानों की हमारे तो झोली भरने के लिए तैयार होते हैं। उस समय बाबा दिल की बातें सुनने के लिए फ्री रहते हैं। उस समय बाबा प्यार से हमें पालना देते हैं। तो वो वरदानी समय हम याद के लिए हम कितना सफल करते हैं। देखिए, हम मधुबन में आए, भट्टी में आए, यहां हम इतना अटेंशन से वो अनुभव करने बैठते हैं। यही दृढ़ता हमें हर रोज अपने अमृत वेले के लिए रखनी है। कई बार हम उठ के तो बैठ जाते, नहीं बैठते, बहुत से लोग हैं, पर कहीं ब्राह्मणों का है ना, जुमे जुमे जैसी नमाज होती, वैसे इनका जुमे जुमे गुरुवार के गुरुवार अमृत वेला करेंगे। कोई सोमवार गुरुवार करते हैं, कोई गुरुवार संडे करते हैं, कोई है बैठा यहां, अपने आप से पूछ ले, और कोई नियमित अमृत वेला करते हैं। परंतु बाबा कभी मुरली में कहते हैं, अमृत वेले ब्राह्मण उठ के तो बैठते हैं, परंतु बाबा क्या देखते वतन से, हठ योगियों के म्यूजियम देखते हैं। कोई बैठने का तरीका कैसा तो मनस्थिति कैसी, हठ योग में तो भिन्न भिन्न आसन होते हैं ना, तो ऐसी बाबा बच्चों की अवस्था देखते हैं। या गुलजार दादी कहते थे, बैठते तो बाबा की याद में है, लेकिन मैं देखी गोनी, मैं देखी गोनी माना, ऐसी अवस्था। अब बताइए, फिर कोई कहते हैं, बाबा मैं तो आपके पास आ नहीं सकता हूं, इसका मतलब बाबा आप ही वतन से नीचे आ जाओ, है ना, ऐसा। तो ऐसी तो अमृत वेला हमारी नहीं है। हम अलर्ट होके बैठते हैं, बुद्धि रूपी झोली मेरी कितनी बड़ी है, क्या मैं उसमें वरदानों का अनुभव कर रही हूं? क्या मुझे बाबा के उस प्यार की खोई हुई मैं आत्मा हूं वो अनुभव होता है? तो लक्ष्य लेकर के बैठना है। जितना लक्ष्य ऊंचा है उतनी स्थिति ऊंची बनती है। इसीलिए अमृत वेले की याद को हम इतना सरलता से सहजता से न ले। हाँ, अमृत वेला किया, हाँ किया, पर अमृत वेला ही किया क्या? थोड़ा मृत वेला भी था। वो हमें देखना है। हम और किसी के लिए ये नहीं करते हैं, हम ये अमृत वेला अपने लिए करते हैं। परंतु वो समय भगवान ने हमारे लिए विशेष रखा है। अगर कोई वीआईपी हमें अपॉइंटमेंट दे दे कि आप इतने बजे आकर मिलो, तो क्या होता? कैसे तैयार होके जाएंगे? हम प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाते, हम फलाने प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिलने जाते। अगर वहां जाकर बैठना पड़े तो भी हम कैसे बैठते? ऐसे कैसे बैठेंगे? अलर्ट। तो इसी प्रकार रोज भगवान ने मेरे लिए ही अपॉइंटमेंट फिक्स की है। वो बाबा मेरे मिलने के लिए मुझे रोज कहता है, मेरे लाडले बच्चे आ जाओ मिलन मनाने। तो बाबा के साथ मेरी अपॉइंटमेंट रोज की फिक्स है, तो मुझे कितना अलर्ट होकर बैठना है और बाबा से गुण और शक्तियां उसका अनुभव करना है, फिर भिन्न भिन्न अवस्थाओं का अनुभव करना है। बीज रूप स्थिति, अशरीरीपन की स्थिति, फरिश्तापन की स्थिति, रूह रिहान, कितने सारे हमें होमवर्क मिले हुए हैं। सेवा करते भी हम अपनी स्थिति को बनाए रख सकते हैं। एक घंटे में एक मिनट हम अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं। अशरीरी बनने के बाबा ने कितने फायदे बताए? कोई कहता मेरी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कार्य नहीं करती है, तो बाबा ने एक बिंदु रूप का अभ्यास बताया, जिस अभ्यास को बार बार करने से कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर हमारी बढ़ती जाती है। एक घंटे में एक मिनट मैं शरीर से डिटैच, परम धाम निवासी आत्मा हूं। इस अभ्यास से बाबा ने कहा वेस्ट का जो वेट है वो भी खत्म हो जाता है। व्यर्थ चिंतन से जो आत्मा पर बोझ चढ़ता है वो भी खत्म होता है। जैसे हम अपना शरीर का वेट रिड्यूस करने के लिए तन को एक्सरसाइज कराते, वॉकिंग करते हैं, डाइट मेंटेन करते हैं, तब तो हम रिड्यूस होते हैं। तो इसी प्रकार जन्म जन्मांतर के पापों का जो बोझा है उससे मुक्त होने के लिए हम ये एक्सरसाइज करते हैं, बहुत हल्कापन महसूस करेंगे। और साथ में बाबा ने हमें ये कहा कि बच्चे दिन में 8 बार कौन सा अभ्यास करने को कहा? जरा हाथ उठाएंगे कि जो दिन में 8 बार 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं। 8 बार, 1, 2, 3, 4 हाथों पर है। अच्छा दिन में तीन बार कौन करता? पांच स्वरूप का अभ्यास माताओं के हाथ ज्यादा ऊपर है, कितना अच्छा अभ्यास है जिससे संस्कार भी परिवर्तन होते हैं और हमें भविष्य का नशा बना रहता है। स्वदर्शन चक्र भी हो जाता है, वर्णों की स्मृति भी हो जाती है, आदि अनादि स्वरूप भी याद हो जाता है। इतनी अच्छी एक्सरसाइज है पांच स्वरूप का अभ्यास। अच्छा चार धाम की यात्रा रोज कौन करता है? हमें तो रोज चार धाम की यात्रा करनी है, रोज करनी है। अमृत वेला पूरा करते कहां पे आ जाओ? परम धाम से मिलन मनाते चारों धाम की यात्रा कीजिए। दुनिया में तो कहते हैं ना, जो चारों धाम की यात्रा करते हैं उनको मोक्ष मिलता है, परंतु हमें तो पता है कि मुक्ति मिलती है। तो यहां भी हमें कर्म बंधनों से मुक्त होना है, बाबा समान बनना है, तो चारों धाम की यात्रा कीजिए। ये सब बातें मैं जो कह रही हूं ये बाबा ने बताई हुई स्मृति दिला रही हूं। हम सुनते हुए कहेंगे नया तो दीदी कुछ नहीं बताते, सच में नया क्या बताएंगे? बाबा ने जो दिया है वही हम भूलते, उसको हमें स्मृति स्वरूप बनाना है। तब तो कहां गया, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। हम स्मृति स्वरूप ही नहीं बनते तो हमारी स्थिति शक्तिशाली कैसे बनेगी? इसीलिए वो बैलेंस रखने के लिए बाबा ने ये सब हमें युक्तियां बताई है। बाबा को भोग लगा करके ही भोजन खाना है। सच्चा और पक्का ब्राह्मण बाबा को भोग लगाने के बिना खाना खाएंगे ही नहीं। तो ये भी युक्ति है ना कि बाबा को याद करना है, तो हम याद को किनारे करके सेवा नहीं करें। याद और सेवा का हम बैलेंस रखते हैं जिससे हमें बाबा की, ब्राह्मण परिवार की और सबकी ब्लेसिंग प्राप्त होती है, पुण्य का खाता जमा होता जाता है। और साथ ही साथ याद से पास्ट के विकर्म विनाश होते हैं और हम निर्विघ्न बनते जाते हैं। इसीलिए बता रही थी कि एक बार ऐसा सुना कि गुरु नानक देव जी कहां प्रवचन करने गए, तो वो प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। तो एक बहुत धनवान व्यक्ति बैठा था पर उसका देवाला निकला हुआ था। तो लास्ट में गुरु नानक जी ने उनसे पूछा कि भाई आप क्यों बैठे हो? तो बोला मुझे कुछ ऐसी युक्ति बताओ कि जो मेरा देवाला निकल गया तो कम से कम मुझे कुछ प्राप्ति हो। तो गुरु नानक देव जी ने उसको युक्ति बताई और वो युक्ति क्या थी? कहा ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है तब तुम गले में ढोल डाल दो और सवेरे सवेरे हर एक व्यक्ति के घर के सामने ढोल बजाते हुए कहो उठो जागो और ईश्वर को याद करो। अब उस समय सवेरे के समय पर हर घर के सामने वो व्यक्ति ढोल बजाता रहा। अब बताइए इतना सवेरे सवेरे कोई आके ढोल बजा दे, उस समय तो बड़ी मीठी नींद होती है लोगों को, उन्हें थोड़ी अमृत वेले का पता होता है। तो कहीं लोग उनको गाली देते थे, बुरा बोलते थे, तो उन्होंने जाकर के बताया कि मैं तो लोगों को भगवान को याद दिलाने के लिए उठाता हूं, जगाता हूं, कहता हूं, हाँ उठो राम सिमर प्रभात मोरे मन, लेकिन लोग क्या करते हैं, मुझे गाली देते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, आप अपना कार्य जारी रखिए, आप तो पुण्य का कर्म कर रहे हैं, जिस समय लोग आपको गाली देते बुरा करते, आपके जो पास्ट के पाप है वो भस्म होते हैं, आपके भीतर की शक्तियां बढ़ेगी। कहते हैं आज भी पंजाब में वो गांव है, वहां पर सवेरे ढोल बजता है, ऐसे मानते हैं। तो बात तो छोटी सी है परंतु महत्व कितना है। इसीलिए हमें बाबा जो जो श्रीमत देते हैं, जो जो डायरेक्शन देते हैं, उसको दिल से फॉलो करना है। चाहे वो योग के डायरेक्शन मिलते हैं, चाहे हमें धारणा की बातें बताई जाती है, हम सुना अनसुना बहुत करते हैं। जो सुना अनसुना करना चाहिए उसको याद करते हैं, और जो याद करना चाहिए उसे हम भूल जाते हैं। इसीलिए श्रीमत को हमें बुद्धि में धारण करना है। श्रीमत माना ही बाबा का जो दिव्य ज्ञान है, जो हमारी बुद्धि को दिव्य बनाता है, वृत्ति दृष्टि और कर्म को श्रेष्ठ बनाता है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, आप मास्टर नॉलेजफुल हो, है ना, सभी नॉलेजफुल, नॉलेजफुल बाप के हम मास्टर नॉलेजफुल बच्चे हैं, नॉलेजफुल भी है तो साथ साथ केयरफुल भी बनना है। हर बात में सावधानी से चलते रहना है, नहीं तो हम सब पढ़ते रहते रास्ते पे चलते स्लोगन, सावधानी हटी। तो ज्ञान मार्ग में भी हमें बहुत केयरफुल होकर चलना है। इसीलिए कहते हैं इतना बड़ा हाथी होता है, हाथी रास्ते चलते क्या करता बताइए, सिर्फ चलता है मस्ती में, और क्या करता, कहते फूंक लगा लगा के चलता है। क्योंकि छोटी सी चींटी भी अगर हाथी के कान में चली जाती है तो हाथी की मृत्यु हो सकती, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए हमें भी बाबा ने इतने ऊंचे ज्ञान मार्ग पर चलना सिखाया। कहते हैं हम ज्ञान में चल रहे, अजो भाई ने कहा हम उड़ रहे, चलते कब तक रहेंगे, परंतु चलना है तो सावधानी से चलना है। हमारे पास एक भाई है क्लास में, कहते हैं दीदी बाबा इतनी बड़ी प्राप्ति दे रहे हैं, लेकिन ये ना साबुन की सीढ़ी बनाई हुई है, साबुन की सीढ़ी पे चलो तो इसीलिए बहुत सावधानी से चलना है। बाबा कहते हैं ना माया अजगर का रूप लेती है, तो किसी न किसी रूप से ब्राह्मणों के आगे माया आती है, उसको परखना है। और ईश्वरीय रूप की भी माया बहुत आती है। सत्य क्या है वो बुद्धि में धारण करके चलना। तो इसीलिए केयरफुल बनना बहुत जरूरी है समय अनुसार। हमें तो सब पता है, हम तो सब जानते हैं, लेकिन समय आने पर ही सावधानी हटी। तो अवस्थाएं ऊपर नीचे होती है, सुनी सुनाई बातें, इधर उधर की बातें, यूट्यूब की बातें, अरे क्या उसमें पड़ा है। एक बाबा जो सिखा रहा वही सुनो। मुरली पर ध्यान हो, परसों भी हम कल दो दिन पहले रामनाथ भाई ने कितनी अच्छी युक्ति बताई, श्रीमत का स्रोत ही मुरली है, हर प्रश्न का जवाब मुरली है, हर मन के संकल्प की शक्ति बाबा की मुरली है, ब्राह्मणों के जीवन का श्वास मुरली है, बाबा का लव लेटर मुरली है, उस मुरली को अंदर में मुराना है। जैसे अचार बनाती माताएं के कहता दे दो ना जरा अचार आज बनाए, कहते चार दिन के बाद खाना। क्यों? उसका टेस्ट नहीं आता, चार दिन के बाद हो थोड़ा तो मुरना चाहिए। ऐसे मुरली को मनन चिंतन करके अपना बनाना, जिससे ताकत मिलती है। तो नॉलेजफुल के साथ केयरफुल कैसे रहना है, चाहे वो दृष्टि वृत्ति कृति सबके लिए बाबा हमें मुरली में सावधानियां देते हैं। और जो केयरफुल रहेगा वो चेयरफुल रहेगा। ब्राह्मणों का चेहरा कैसे होना चाहिए? सदा मुस्कुराता हुआ। मुस्कुराने के लिए क्या करना पड़ता? केवल अपने मन को स्वच्छ रखना है। चाहे मुझे किसी की कितनी भी कोई कमी कमजोरी पता हो, वो कमी कमजोरी उस आत्मा की है। तो हम ऐसे करें, तो मैंने तो अपना संस्कार घृणा वाला दिखाया, नफरत वाला दिखा दिया, हमने सहयोग क्या दिया उसको? पेशेंट को सहयोग दिया जाता। ऐसी किसी में अगर कोई कमी कमजोरी है तो हम शुभ भावना शुभ कामना रखें और सदा राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। गीत सुनते ना, राजयोग का राज जो जाने राजा ही पद पाए। तो राजा ही पद पाना है तो मुस्कुराना जरूर है, कोई उसके लिए मेहनत नहीं। बाबा से बुद्धि योग लगा है, शुभ कामना शुभ भावना है, तो जरूर हमारे चेहरे पर वो मुस्कुराहट बनी रहेगी। अंदर में प्राप्तियों का नशा हो, हमें कौन मिला और हमें क्या रोजाना प्राप्ति हो रही है। अब हम सबसे मिलते हैं, हम किसी को सबको थोड़ी जानते हैं, जानते तो दो चार लोगों को है, परंतु मुस्कुराते हुए जब किसी को ओम शांति करते हैं तो कितनी अच्छी फीलिंग्स आती है। ये हमारे परिवार के भाई बहने हैं, पर जरा भी अगर किसका चेहरा ऐसा दिखता, पता नहीं क्या बात है, किसका संकल्प चलता है। इसीलिए हमें सदैव हर्षित मुख रहना है, हर्षित चित्त रखना है। चित्त में अगर ज्ञान चिंतन चलता है, बाबा के गुणों के गीत गाते हैं, तो चेहरे पर वो मुस्कुराहट सदा बनी रहती है। नॉलेजफुल केयरफुल चेयरफुल बनेंगे पावरफुल। सारी पावर्स बाबा से हमें ही मिलनी है, हमारा ही कनेक्शन रिलेशन बाबा के साथ है। तो जहां कनेक्शन ठीक है, रिलेशन भी ठीक है, तो पावर्स आएगी ही, बैटरी चार्ज होगी। अगर थोड़ा भी कनेक्शन लूज होता तो बैटरी चार्ज नहीं होती। मोबाइल की बैटरी के लिए भी क्या देखते? देखते हैं सही प्लग पिन लूज तो नहीं। तो वैसे स्वयं को देखो, मेरा कनेक्शन बाबा के साथ कैसा जुड़ा हुआ है। तो जितना कनेक्शन रिलेशन बाबा से है, उतना हम पावरफुल बनते जाते हैं। और जो पावरफुल बनेगा उसको सफलता न मिले, सक्सेसफुल न हो, ये हो नहीं सकता। इसीलिए सेवाओं को से हम किनारा करके स्थिति नहीं बना सकते। सेवा भी करनी है और स्वस्थिति भी बनानी है, अर्थात राजयोग को हम अपने जीवन का अंग बना दिया है। इसीलिए कहा जाता है ना, योगी जीवन वाले हो या योग लगाने वाले, 2-3 घंटे के योगी हो, तो हम सब योगी जीवन वाले हैं। और हमारे पहला ही बाबा से हमें वरदान मिला है, पवित्र भव राजयोगी भव। इसीलिए ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता कहे, महानता कहे, यही है कि सेवा करते हुए हम योग युक्त, युक्ति युक्त, राज युक्त अपने को ऐसा बनाए। हर बात का राज बाबा ने ब्राह्मणों को बताया है, इसीलिए न क्यों न क्या न कैसे सब प्रश्नों से पार। कौन सी स्थिति? प्रसन्न चित्त, यही ब्राह्मण जीवन है। और बैलेंस रखते हुए ब्लेसिंग को प्राप्त करना है। तो सदैव हमारी जीवन में बाप दादा की ब्लेसिंग आगे बढ़ाती रहेगी और हम बाप समान संपन्न संपूर्ण और बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। ओम शांति।